हॉल में कदम रखते ही शामली ने एक गहरी सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन अब भी बेकाबू थी। उसकी चाल सामान्य थी, लेकिन अंदर सब कुछ उलझ चुका था। वो धीरे धीरे सोफे तक आई और बैठ गई, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, वही सीन फिर से सामने आ गया। अक्षरा, विश्वनाथ के इतने करीब, उसका यूं छूना, और फिर विश्वनाथ का उसे हटाने के बजाय अपनी बाहों में भर लेना। शामली ने तुरंत आंखें खोल दी। उफ, उसने हल्के से सिर झटका। क्या था ये सब? उसने खुद से ही बुदबुदाना शुरू किया। माना कि सगाई होने वाली है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सबके सामने ऐसे ओपन रोमांस करें। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। मिस्टर राठौड़ खुद को समझते क्या हैं? थोड़ी भी शर्म नहीं है क्या? उसने कुशन उठाकर अपने पास रख लिया और उसमें उंगलियां गड़ा दीं, जैसे अपना गुस्सा उसी पर निकाल रही हो। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा थोड़ा ढीला पड़ा। या फिर, उसने खुद से ही धीरे से कहा, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूं। वो चुप हो गई। कुछ सेकंड तक सिर्फ खामोशी रही। फिर उसने खुद को ही जवाब दिया, नहीं, ओवर रिएक्ट नहीं कर रही, कोई भी होता तो अजीब लगता। उसकी नजरें सामने दीवार पर टिक गईं, लेकिन वो देख कुछ नहीं रही थी, बस सोच रही थी। और उन्हें क्या जरूरत थी ऐसे बिहेव करने की? उसके होंठ हल्के से भींच गए। पहले तो जैसे कुछ था ही नहीं, और फिर अचानक वो वाक्य अधूरा छोड़ गई। दिल के अंदर कहीं कुछ चुभा था, जिसे वो खुद भी ठीक से समझ नहीं पा रही थी। मुझे क्या? उसने अचानक सीधा होकर कहा, जैसे खुद को झिड़क रही हो। उनकी लाइफ है, जिसे चाहें गले लगाएं, जिसे चाहें। लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई। उसकी आवाज खुद ही धीमी पड़ गई, क्योंकि दिल दिमाग की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने धीरे से सिर पीछे टिकाया और छत की तरफ देखने लगी। फिर इतना बुरा क्यों लगा? ये सवाल उसने खुद से किया, और इस बार कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब सी खामोशी जो उसके अंदर फैलती जा रही थी। तभी शामली, आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। वो चौंक कर सीधी बैठ गई। आर्यन सामने खड़ा था, हाथ में कुछ फाइल्स लिए। तुम यहां अकेले क्या कर रही हो? उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन उसकी नजरें ध्यान से शामली के चेहरे को पढ़ रही थीं। कुछ नहीं, शामली ने तुरंत खुद को संभालते हुए कहा, बस थोड़ा सिरदर्द था तो सोचा बैठ जाऊं। आर्यन ने भौं उठाई, सिरदर्द या कुछ हार? उसका लहजा हल्का था, लेकिन सवाल सीधा। शामली एक पल के लिए चुप रह गई। तुम ज्यादा सोचती हो, आर्यन ने आगे बढ़ते हुए कहा और उसके सामने बैठ गया, और फिर खुद ही परेशान हो जाती हो। शामली ने हल्की सी हंसी निकालने की कोशिश की। तुम्हें कब से मेरी इतनी समझ आने लगी? जब से तुम अपने चेहरे से झूठ बोलना सीख गई हो, आर्यन ने तुरंत जवाब दिया। शामली ने उसे देखा एक पल के लिए, जैसे वो सच में सब समझ गया हो, लेकिन उसने नजरें हटा ली। कुछ नहीं आर्यन, उसने धीरे से कहा, बस काम का प्रेशर है। आर्यन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी सीढ़ियों से कदमों की आहट आई। दोनों की नजरें उधर उठ गईं। विश्वनाथ और अक्षरा दोनों साथ नीचे आ रहे थे। अक्षरा के चेहरे पर वही सुकून भरी मुस्कान थी, और विश्वनाथ, वो सामान्य दिख रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही उनकी नजर शामली पर पड़ी, एक पल के लिए, बस एक पल के लिए, उनकी चाल हल्की सी धीमी पड़ गई। शामली का दिल फिर से तेज हो गया। उसने तुरंत नजरें हटा ली। मुझे थोड़ा काम देखना है, उसने जल्दी से कहा और उठने लगी। शामली, आर्यन ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो रुकी नहीं। वो तेजी से वहां से निकल गई। पीछे तीन नजरें उसे जाते हुए देख रही थीं। अक्षरा की आंखों में हल्की सी जीत की चमक थी, आर्यन के चेहरे पर चिंता, और विश्वनाथ, उनकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था, गंभीर, उलझा हुआ और कहीं ना कहीं पछतावा। कॉरिडोर में चलते हुए शामली की चाल तेज थी, जैसे वो किसी से भाग रही हो, या शायद खुद से। ये सब मुझे अफेक्ट क्यों कर रहा है? उसने खुद से कहा। आवाज धीमी थी, लेकिन बेचैनी साफ। मैं कौन होती हूँ कुछ फील करने वाली? उसके कदम अचानक रुक गए। उसने दीवार का सहारा लिया और आंखें बंद कर लीं। वही सीन फिर से, इस बार और साफ, और इस बार उसके दिल में एक नाम भी था, विश्वनाथ। उसने बहुत धीरे से उसका नाम लिया, जैसे खुद से ही स्वीकार कर रही हो कि बात सिर्फ उस सीन की नहीं है, कुछ और है, कुछ जो वो अब तक नज़रअंदाज करती आई थी। लेकिन अब वो सामने खड़ा था, साफ और सीधा। उसने आंखें खोली। चेहरे पर अब पहले जैसा गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। ये ठीक नहीं है, उसने खुद से कहा, बिल्कुल भी नहीं। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। मुझे अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, ये कहते हुए वो फिर से आगे बढ़ गई। इस बार कदम धीमे थे लेकिन ठहरे हुए, जैसे उसने कोई फैसला ले लिया हो। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल अब भी बाकी था। अगर उन्हें सच में फर्क नहीं पड़ता तो मुझे क्यों पड़ता है? किचन में हल्की सी खामोशी फैली हुई थी। शामली काउंटर के पास खड़ी थी, हाथ में कप था जिसमें वो धीरे धीरे चाय की जगह बस गर्म पानी घुमा रही थी, जैसे खुद को शांत करने की कोशिश कर रही हो। पूरा किचन खाली था, सिर्फ बर्तनों की हल्की खनक और उसकी सांसों की आवाज। तभी पीछे से जूतों की आहट हुई, धीमी लेकिन साफ। शामली का हाथ एक पल के लिए रुक गया। दिल ने जैसे पहले ही पहचान लिया था, वो मुड़ी नहीं। एक चाय मिल सकती है? आवाज आई, वही भारी शांत लेकिन असरदार। विश्वनाथ। शामली ने धीरे से आंखें बंद की, फिर खुद को संभालते हुए पलटी। क्या मतलब? उसने हल्का सा भौं चढ़ाते हुए कहा, मैं आपको चाय बना कर दूं? उसकी आवाज में सीधा सा सवाल था और हल्की सी दूरी भी। ठहरिए, मैं किसी सर्वेंट को बुला देती हूँ। वो आगे बढ़ने ही वाली थी कि नहीं, विश्वनाथ की आवाज ने उसे रोक दिया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़े, हर कदम नापा हुआ, ठहरा हुआ। आज उसने थोड़ा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे ही हाथ की चाय चाहिए, एक पल के लिए। दोनों के बीच सन्नाटा खिंच गया। शामली की उंगलियां हल्के से कस गईं। उसने तुरंत नजरें हटा ली। आपको अचानक मेरी बनाई चाय क्यों याद आ गई? उसने धीमे लेकिन कंट्रोल्ड लहजे में कहा। विश्वनाथ के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई, शायद इसलिए क्योंकि कुछ चीजें अचानक ही अच्छी लगने लगती हैं। शामली ने उसकी तरफ देखा, सीधा सवाल भरी नजरों से, लेकिन इस बार वो कुछ बोली नहीं, बस मुड़ी और चाय बनाने लगी। गैस जलाई, केतली रखी, पानी डाला। उसके हाथ काम कर रहे थे लेकिन ध्यान पीछे खड़ा इंसान पर था, जिसकी नजरें अब भी उसी पर टिकी थीं। चीनी कितनी? उसने औपचारिकता में पूछा। जितनी तुम सही समझो, विश्वनाथ ने बिना सोचे जवाब दिया। शामली हल्का सा रुकी, फिर बोली, हर चीज मैं ही डिसाइड करूं ये जरूरी नहीं होता मिस्टर राठौड़। उसके शब्द सीधे थे लेकिन आवाज धीमी। विश्वनाथ ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी। कुछ चीजें, उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें ही डिसाइड करने देना चाहता हूं। शामली का दिल एक पल को तेज धड़का लेकिन उसने खुद को रोका। चाय बन रही है, उसने बस इतना कहा और कप में चम्मच घुमाने लगी। खामोशी फिर से लौट आई लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा भारी थी। चाय की खुशबू धीरे धीरे किचन में फैलने लगी और दोनों के बीच कुछ हनकहा और गहरा होता चला गया।